ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंध है, अध्याय पहला, और श्लोक संख्या है 7 और 8 है। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवान्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञः सूर गणेश्वरः। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्तर्षियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। स्वयंभू मनु के जीवन काल मन्वंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्तर्षियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माएं मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने हैं। ये सृष्टि की शुरुआत में स्वयंभू मनु और शत्रुपा की वंशज अभी फैल रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि सृष्टि की उत्पत्ति तो हुई है, इसके विस्तार की इसकी जिम्मेदारी में मानस पुत्र ज्यादा कुछ सहयोग दे नहीं पाए। रुद्र और सप्तर्षियों में से भी ज्यादा मानस पुत्र ही थे, कई उनके अंग में से पैदा हुए। फिर भी सभी के लिए एकमात्र आदेश था कि वो स्वयं सभी प्रजापति बने और सृष्टि का विस्तार करें। तो ये आदि काल में ही आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। 4 कुमार ने तो ना बोल दी, ब्रह्मा जी गुस्से में आ गए, तो रुद्र निकल पड़ा। रुद्र की सारी जो विस्तार हैं सभी रोने और रुराने वाले ही थे। और आप देखोगे कि मानस पुत्र और इनके विस्तार के साथ ये रुद्र यानी कि 11 रुद्र जो हैं वो मन मिटाव नहीं कर पाए। वहां तो झगड़े ही होने लगे और मरने लगे। जो जो पैदा होते हैं तो विस्तार हो ही नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि नहीं, हमें भगवान स्वयं को बुलाना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर स्वयं मनु और शत्रुपा दोनों साथ साथ में पैदा हुए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की ये जिम्मेदारी बनी है कि सारे जीवों को भी उनके माध्यम से उत्पन्न करना है। और यहां 6 प्रकार की संतान का विस्तार हो रहा है। तो ये समझना आवश्यक है कि जो मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि एक साथ साथ में 6 कोटि के पुत्र पैदा हो रहे हैं। मनु और शत्रुपा, मनु को तो 3 ही बेटी थी, बेटा नहीं था। और इनसे जो जो पैदा होगा, सर्वप्रथम भगवान का अंशावतार ही तो आएगा, लेकिन हाँ ये आकुति को ब्याह करा दिया ऋषि मुनि के साथ और शर्त रखी गई कि जो पैदा होगा वो तुझे मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ऋषि तैयार हो गए और भगवान की इच्छा के अनुसार यज्ञ और दक्षिणा पैदा हुए। यज्ञ को मनु भगवान को वापस करना पड़ा, ऋषि मुनि तैयार हो गए। अभी काल के क्रम से यज्ञ और दक्षिणा जो लक्ष्मी नारायण के ही तो अवतार थे, इन बीच अब संतानें पैदा हो रही। भगवान कोई गुण छूते नहीं, फिर भी मनुअंतर सारे मनु में ये यज्ञ भगवान का अंशावतार कहा जाता है। यज्ञ दक्षिणा ये सारे जो शब्द का यहां उपयोग है वो वास्तव में सही है और उनसे जो पैदा होने वाले सब तुषित कहलाएंगे, यानी कि संतोष तोष प्रतोष ये सब इनके बेटे के नाम बने। तो उसके पीछे भावार्थ क्या रहा? कम से कम जो भावार्थ होता है वो सिद्धांत बनता है। कैसे पैदा होता है और क्यों पैदा होता है वो प्रश्न बाद में आता है। सर्वप्रथम सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि सभी जीव तो भगवान के अंश हैं, लेकिन विभिन्नांश जीव को कहा जाता है। अलग कैसे हुए वो भी भगवान ने कारण बता दिया है, जो इच्छा और द्वेष का कारण बताया तो बिना अपवाद। अब यहां भगवान के अंशावतार द्वारा भी प्रजोत्पत्ति हो रही, तो शुरुआत की ये सारी प्रजोत्पत्ति बहुत दिव्य होती है, भौतिक अवस्था में आती है। सात्विक भाव ज्यादा होगा ही, रजस और तमस से प्रजोत्पत्ति नहीं होती। ये आदि काल है, सत्ययुग का काल बन रहा है और सृष्टि के शुरुआत में, तो सृष्टि पैदा करने के पीछे भी हर एक जीव को संतोष मिलेगा और परस्पर के व्यवहार के अनुसार ये देवता जो अभी जो तुषित कहलाए और इनके भी वंशज भी होते हैं। ज्यादातर वो वंशज हम नहीं जानते, न तो शास्त्र में उसका उल्लेख है कि देवताओं की संतति कैसे पैदा होती है। लेकिन सही बात है, इनका भी परिवार है, कहीं कहीं देवताओं की संतति के बारे में जानते हैं। शिव जी उन्होंने भी गणेश कार्तिकेय और ओखा लड़की को भी पैदा किया था। देवता संतति पैदा कर सकते हैं, सात्विक भाव है, सृष्टि का संचालन करने का इनका आदेश है। सिद्धांत के पीछे आदेश ही एकमात्र कारण है। यदि आदेश नहीं है तो सिद्धांत को स्थापित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान स्वयं कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो धर्म और अधर्म की संतुलना यदि नहीं बनी है तो संचालन यानी कि ये जो रख रखाव है भगवान विष्णु का, जो रख रखाव का काम नहीं बन पाता। रख रखाव में संतुलना होनी चाहिए, संतुलना को संतोष कहते हैं, सही। तो अवश्य जो सिद्धांत बना है, सिद्धांत के पीछे जो आदेश है वो आदेश कैसे चला आ रहा है वो हमें स्वीकारना चाहिए। आदेश के पीछे आध्यात्मिक शक्ति होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी आदेश दे दे वो आदेश कहलाएगा। ये कलयुग में जो आदेश मिलता है, है? और जो गुणों में ही आवृत रचे पुछे जो जीवात्माएं हैं, चाहे वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पे भी ना हो, जहां यज्ञ स्वयं को भगवान को इंद्र बनने की आवश्यकता हुई है, इंद्र पोस्ट है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्थिति है, वो देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। हम बाद के इंद्रों की जब बात करते हैं तो ये पोस्ट वाला व्यभिचारी भी हो सकता है, गुरु पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से इंद्र को श्राप मिला था, तो वो कौन सा इंद्र है? इंद्र पोस्ट है, लेकिन सृष्टि का संचालन करने में जब तक ये विनाश का समय शुरू नहीं होता, तब तक जो संतुलना बनी रहती है उसके पीछे भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, मनु के द्वारा जो आदेश का पालन हो रहा है उस पर समतुलना बनती है। यदि समतुलना नहीं बनती तो नाश समझो। कलयुग में हम लोग क्यों परेशानी अनुभव करते हैं? उसका कारण यह है कि हम आदेशों का पालन यथावत नहीं कर पाते, काफी दूषण प्रदूषण इत्यादि भरा रहा, तो संतोष तोष प्रतोष कहां होगा? नाम धर रखे हैं लेकिन काम कूड़े हैं। यानी कि नाम के पीछे भी गुणों का प्रभाव तो रहना चाहिए। तो ये जब हम अध्यात्म यानी कि जीव के मूल स्वभाव पुनः प्राप्त करने के लिए ये युग धर्म में हरे नाम संकीर्तन करते हैं, उससे जो पवित्रता आती है, तो पवित्रता के कारण ये सारे आदेशों को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, ये करनी चाहिए। इसका कारण ये है, नहीं तो तात्पर्य हाथ में नहीं रहता, एक कोई धार्मिकता का अखाड़ा बन जाएगा। धर्म वहन करने के लिए पीछे आदेश और वो सदगुरु का आदेश उसी समांतर होता है। प्रभुपाद जी के आदेश में अध्यात्मता की ही सर्वोपरिता रही है। प्रभुपाद जी के नाम पर जब हम संचालन में कुछ निर्देशों का पालन करते हैं तो उसके पीछे आध्यात्मिकता का आदेश है। ये क्यों है वो समझने की आवश्यकता होती, नहीं कि ये सरकार जैसे चल रही है वैसे हमें अपनी संस्था का संचालन करना चाहिए। अभी तो ये भी मोड़ आता है। तो कहने का मतलब है जो नाशपंथी युग है उसमें बचने के लिए उपाय करने के लिए हमें ये सारी समझ की आवश्यकता बनी रहती है। इसकी ही चर्चा भागवत चर्चा कहलाती है कि सिद्धांत बना रखे हमें, ये मूल हकीकत पर हमें ज्यादा कोई ठोस देने वाला पीछे यदि होता है तो हम बच जाएंगे। तो यहां इस मनु मनवंतर अवतार स्वयंभू मनु यानी कि ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। हम तो अभी 7वें मनु के राज्य में हैं। वो वैवस्वत मनु कहलाता है। वो भी भागवत में कैसे कौन किस तरह मनु बने हैं और ये 6 प्रकार की संतानों में से आता है। इसीलिए अभी जो जिसे जीनियोलॉजी कहते हैं वंश परंपरा, वंश परंपरा, तो वंश परंपरा पहले से चली आई है। वंशज चंद्रवंश सूर्यवंश दोनों की बातें आती हैं और सभी के नाम दिए जाते हैं और कौन मनु बना वो भी बताया जाता है, कौन शुद्ध भक्त बना वो भी बताया जाता है, क्यों वो मानव या दानव दोनों में से होता है। हाँ तो ये सब जो तुषिकता के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन लोगों का सारा कर्तव्य परस्पर एव संभूतम। भगवान ने कहा है कि क्या आदेश था कि देवता और मानव दोनों एक दूसरे को सहयोग दे, और इसी तरह देवताओं को भी इनके दिए हुए पर उनका भाग जो है यज्ञ का भाग देने की आवश्यकता बनी है। यदि किसी भी गुणों के कारण दक्ष प्रजापति भी शिव जी का भाग देने के लिए तैयार नहीं, देखो क्या हालत होती है, आदेश का भंग है। परस्पर देव संभूतम बिल्कुल नहीं बनता, तो यज्ञ बीच में पड़ा रहता, ओ यज्ञ की उपस्थिति से ही समतुलना बनी रहेगी। इसका भी हमें समझ में आता है कि यदि यज्ञ नहीं है तो यज्ञ यज्ञेश अगले श्लोक में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन में आदर्शता लाने वाले बीच में खड़े हैं यज्ञ उपस्थिति। तो हर एक संस्कार में हमें यज्ञ की आवश्यकता होती है, यह यज्ञ को बीच में रखकर हर एक संस्कार भी करने पड़ते हैं। लेकिन कई संस्कार में यज्ञ करते ही होने चाहिए सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि 16 संस्कार मनुष्यों में जो आया है तो ये भगवान विष्णु को संतोष देने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, आपने सुना होगा कल, कि आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी के रूप में सदैव सुखी रहते हैं, संतोष की भावना वाले। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे, और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। पंडित चाणक्य की नीति के श्लोक, चाणक्य श्लोक में ये कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहां स्वतः पदार्पण करती है। तो जहां लक्ष्मी नारायण सेवा कर रही है तो पत्नी स्वयं लक्ष्मी का रूप बनता है। बच्ची पैदा होती है तो लक्ष्मी आई ही कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी का रूप बना रहना चाहिए, इसलिए आदर्शता और संस्कार की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कि जहां पति तथा पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है वहां लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है, और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन वस्त्र और आभूषणों से पत्नी को संतुष्ट रखे। अब परेशानी यह है कि लड़कियां वे स्वयं लक्ष्मी होते भी लक्ष्मी लाना चाहती हैं, न कि पढ़ती हैं नौकरी करती हैं। प्रभुपाद जी ने यहां वृंदावन में खास करके लड़कियों को उच्च शिक्षण देने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया, क्योंकि आदेश है, प्रदेश में दे सकते हो लेकिन यहां कोई व्यवस्था नहीं की। यहां जो ब्रजवास कर रहे हैं और संतान भी यदि पैदा होती है तो इनको यह ख्याल में रखना है, लेकिन बहुत सारी स्कूल खोड़ी हो गई और मथुरा में तो यूनिवर्सिटियां लग रही है। पैसे का व्यापार, लक्ष्मी का नाम माया का व्यापार बन गया, संतुष्टता नहीं है, कुछ नहीं है। तो जिस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है वो आदेश श्रील प्रभुपाद जी को समझना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों या पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में न शांति है न संपन्नता। कल हमने इंटरनेट पर देखा कि ओडिशा के एक गांव में 679 लड़कियों के सामने 2000 लड़के हैं, क्या हालत होगी। संपन्नता नहीं है, जबरदस्ती से आदेश से भी हटकर बाहर निकलना पड़ता है। तो कलयुग में हम जो सारी परेशानियां अनुभव करते हैं तो उसके पीछे आदेश नहीं, जो आदेश हैं वो भी यथावत स्थल काल और पात्र के अनुसार आचार्य जो हैं वो सिद्धांत को छुए बिना बदलते रहते। जैसे कि चाणक्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा कि कलयुग में 5 चीज प्रतिबंधित है, कौन कौन सी? अश्वमेधम गवावलंबम, पैतृपालक, संन्यासम पैतृपालकम, देवरेण प्रजोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत। ये 5 को विवर्जन करना है, छोड़ देना, त्यागना है। अश्वमेध यज्ञ नहीं किया जाता। फिर गायत्री परिवार वाले कार्डबोर्ड के अश्व को भी ले जाते हैं, जलाते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। गैया तो कट रही है, गवावलंब मना किया है। अब संन्यास की बात रही है और हम भी दंडधारी संन्यासी हैं, देखा जाएगा। और पितरों को अभक्ष्य भोजन का पिंड या दान नहीं किया जाता, खिलाया नहीं जाता। और देवर यानी कि भाई की पत्नी के साथ कोई दूसरा भैया प्रजोत्पत्ति ना करे। अब देखेंगे कि यहां सृष्टि की आदि में भगवान स्वयं और इनके वंशज में चले आए और संन्यास इत्यादि सब कुछ था। ये तो कलयुग के लिए मना किया है, लेकिन वो सिद्धांत तो था, सही ना? क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जो चक्राव में डाल देते हैं, और हम आज की परिस्थिति से उसका समाधान करने जाएं तो कभी हो नहीं पाता, हमें तो आश्चर्यजनक लगता है। कौन कौन सी बात है देखो, ये मनु भगवान स्वयं देखो अपनी बेटी का ब्याह ब्रह्मा के बेटे के साथ कर देते हैं, सही? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? तेरे से जो बेटा होगा वो मुझे तुझे दे देना पड़ेगा, और बेटा और बेटी दो को पैदा करने के बाद बेटे को वापस कर देते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वही बेटा बहन के साथ यूं देखे तो शादी में जुड़ा, और यहां कलयुग के सिद्धांतों के अनुसार मना है, फिर भी अपवाद रूप कुछ आ जाता है क्योंकि कलयुग बहुत दूषित युग है, किसी भी प्रकार के व्यभिचार को छोड़ता नहीं। कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो हम सोचते हैं कि धिक्कार को पात्र है, पर यहां यदि श्रीमद् भागवत में ऐसी बातें को समझने के लिए हमें जो सिद्धांत है उसको पकड़ने की आवश्यकता रहती है। भगवान त्रिगुणातीत है और यहां जो प्रजा पैदा कर रहे हैं वो भी त्रिगुणातीत बन रही है, तीन गुणों का अभाव इनको छूता नहीं, यज्ञ को छूता नहीं, दक्षिणा को कैसे छुएगा। लेकिन यहां आदर्शता के अनुसार लक्ष्मी जिसे समुद्र तनया भी कहते हैं, समुद्र की बेटी, यानी कि उसकी स्थिति देवता देवियों में है लेकिन वैकुंठ में तक ही उनका वास बताया, गोलोक वृंदावन में नहीं। तो लक्ष्मी की स्थिति आध्यात्मिक है, भौतिक सृष्टि में संचालन में हर एक स्तर पे संचालनों की आवश्यकता होती है, डिपार्टमेंट भी होते हैं, बड़ा मूल जो सेंट्रल ऑफिस होती है वो भी होती है, तो सब जगह ये सबकी स्थापना बन चुकी है, लेकिन सिद्धांत और आदेश में जहां गड़बड़ी करते हैं तो वहां दूषण चालू हो जाता। तो ये देखो कि मनु और शत्रुपा की ही संतान भी संतान पैदा करेगी आपस में, ऐसा ही हुआ ना। पर लेकिन वहां भगवान का आंशिक अवतार, ये सभी कोई शक्त्यावेश अवतार नहीं है, तो ये जीव तत्व में नहीं आ सकते। शक्ति का आवेश यदि प्रवेश होता है जीव में तो वो शक्त्यावेश होता है, जैसे बुद्ध भगवान शक्त्यावेश, परशुराम शक्त्यावेश, ये श्रील प्रभुपाद जी भी शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। तो अवतारों में जीव तत्व को भगवान की शक्ति का संचार जब होता है तो शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। तो यहां ये भगवान के स्वयं का ही विस्तार जो अंश और कला के रूप में जो आता है, ये इनकी बातें हैं, और ये सब क्रमानुसार बाद में वो देवताओं के आदि बनेंगे। तो जब अंशावतार के रूप में यज्ञ और दक्षिणा लक्ष्मी जो है, विष्णु और लक्ष्मी संचालन में अपने आध्यात्मिक गुणों के द्वारा अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं, लेकिन इनसे जो संतान पैदा होती है जो तुषिता के नाम से जानी जाती है, तो वो आदेश को पालन करके संतोष बनाए रखने या रख रखाव की स्थिति बनाए रखने में जिम्मेदार रहते हैं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति इस तरफ जब होगी तभी तो साथ में उसका रख रखाव का जो है मेंटेनेंस उसका प्रबंध हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी सफल नहीं हुए थे तभी तो मनु और शत्रु पाए। तो यहां बताए जाते हैं कि स्वयंभू के जीवन काल मन्वंतर में तुषित नामक देवताओं में मरीचि आदि सप्तर्षियों तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतान से छह प्रकार की जीवात्मा पैदा हुई। यानी कि ये सभी सप्तर्षि तक सभी आध्यात्मिक हैं, इनसे जो संतानें पैदा होती हैं वो सभी जीवात्माएं कहलाती। हम यदि अपने वंश या गोत्र जिसे कहते हैं, तो गोत्र के द्वारा हम किन गोत्र से आए हैं, तो गोत्र तो कम से कम आध्यात्मिक स्थिति पे होना चाहिए। इनके जो आदि ऋषि हैं जिसे गोत्र शुरू है, तो वो कम से कम आध्यात्मिक स्थिति में बने रहते हैं, होने ही चाहिए। नहीं तो इनकी कोई उसको भी सामान्य मनुष्य के रूप में समझ लेना ठीक नहीं। तो छह प्रकार की जीवात्माएं जो मनु भी पैदा होते हैं, देव भी, देवताएं मनु के पुत्र यानी कि मानव भी पैदा होते हैं, अंशावतार भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन ये जीवात्मा नहीं कहलाएगी। शक्त्यावेश को जीवात्मा का स्वरूप दिया गया है, लेकिन भगवान का जो स्वांश है वो कभी जीवात्मा नहीं होती। वो हमेशा भौतिक दुनिया में आकर भी तीन गुणों से अलिप्त रहती है। सुरेश्वर, सुरेश्वर यानी के देवताओं के ईश्वर, यानी कि कई देवताओं का संकुल होता है, इनके अधिपति सुरेश्वर कहलाते हैं। वैसे शिव जी को भी सुरेश्वर की उपाधि दी जाती है। लेकिन कौन से शिव गुणों से रंजित बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते? सदाशिव है वो आध्यात्मिक स्थिति में है, वो हमेशा विरजा के उस पार होते हैं, वो माया के चंगल में नहीं पड़ते। लेकिन इनकी उपस्थिति जब परावर्तित विष्णु भगवान ने जब सृष्टि पैदा करने के लिए प्रधान प्रकृति जो सुषुप्त अवस्था में थी इस पर जब दृष्टिपात किया, तब उसका जो दृष्टि का रिफ्लेक्शन जिसे कहते परावर्तन, उसे सदाशिव की उपमा देते। तो भौतिक सृष्टि से ऊपर की दशा है और देवताओं के रूप में सदाशिव का विस्तार, रुद्र शिव जी का विस्तार, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, तो मूल जो सदाशिव की परिस्थिति आध्यात्मिक है, बाकी लपेट में आते हैं, गुणों के लपेट में आते हैं। तो हमें यह देखना है कि यहां सिद्धांत का भंग नहीं है, आदेश का भी भंग नहीं है। शिव जी की महत्ता है कि ये जीव तत्व नहीं है, जीव तत्व नहीं, वो न तो शक्ति तत्व है न विष्णु तत्व, लेकिन परावर्तित तत्व है विष्णु जी का। तो ब्रह्मा जी के समझ अनुसार हमें स्वीकारना चाहिए। ऋषि मुनियों, सप्तर्षि ऋषि मुनियों में आते हैं, लेकिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सभी नहीं है। यानी कि कर्दम मुनि जो देवहूति के पति बने हैं, तो वो ऋषि आध्यात्मिक स्थिति पे हैं, उनके पास भौतिक सिद्धियां थी लेकिन इनका दुरुपयोग नहीं करते थे। इनका कर्तव्य प्रजापति के रूप में जब देवहूति के साथ नौ बेटियां पैदा की और कपिल देव का भी जन्म देते हैं, तो वो भगवान के अंशावतार के रूप में आते हैं। तो ये ऋषि मामूली कैसे हो सकते हैं? इसीलिए देवहूति भी उस तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरह जानती थी, जिसे हम एजुकेटेड कहते हैं। जो जानना है वो जानो, जो नहीं जानना है उसकी आवश्यकता मत रखो। वो क्या जानती थी? वो कुछ स्कूल में नहीं गई, कुछ नहीं, फिर भी संस्कार तो पाई है। और मनु भगवान को भी अपनी बेई पर पूर्ण विश्वास है, और योग्य पति के रूप में इन्होंने कर्दम मुनि के साथ ब्याह कर दिया। तो कर्दम मुनि भगवान के भक्त हैं, तपश्चर्या द्वारा सिखाते हैं। तो देवहूति जानती थी कि नौ बेटियां तो अपने अपने घर में चली जाएगी, मेरा क्या हाल होगा, मेरी मुक्ति का कौन साधन, कौन बताएगा? यानी कि वो तो बेटा कर सकता है। बेटियां यदि शादी नहीं करती तो मां बाप की सेवा कर सकती है, लेकिन अपने अपने घर चली जाएगी और प्रजा पैदा करना इनका भी तो कर्तव्य है। कौन ऐसी बेटी होगी जो पिता की देखभाल करने के लिए यदि बेटा नहीं है तो उसकी जगह संभालती है? बहुत क्वचित। और पिता भी समझता है कि अरे ये बेटी तो सांप का भारा कहलाती है, उसे दूसरे घर में ही भेज दो, मैं अकेला अपना फोड़ दूंगा, चूल्हा जलाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा, भजन करूंगा अपना। नहीं, ये कलयुग में काफी गड़बड़ी होती है, देखना। तो आदेश और सिद्धांत, जहां तक संन्यास का सवाल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इन्होंने संन्यास धारण करके गौड़ीय अपनी प्रणाली में, वैष्णव प्रणाली में संन्यास दिया है। ये बहुत दैवी आदेश होता है, दिव्यता का आदेश, आध्यात्मिक आदेश है। कलयुग में संन्यास को जो वर्ज्य है तो स्वयं के मुक्ति का साधन बनाने के लिए नहीं कहा। किसी को इच्छा, चलो बहुत हो चुका, मैं भी संन्यास, लेकिन मैं यदि प्रचारक नहीं हूं तो संन्यास की आवश्यकता क्या है? बाबा जी भी इसी तरह ये सिद्धांत पर अपने संप्रदाय में थोड़े खटकते हैं। बाबा जी भी एक प्रकार का संन्यास ही तो है, पर फिर भी वो भजनानंदी बनना चाहता, प्रचार यानी कि गोष्ठियानंदी नहीं बनना चाहता। तो सिद्धांत बदलता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सभी सन्यासियों को आदेश दिया है कि पृथ्वी ते आचे चत्त नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार बे होई बे मुराना, ये आदेश के लिए जाओ, सबको भगाया, निकलो बाहर। क्योंकि ये आदेश अति पवित्र है, इतना पवित्र है कि जाना ही पड़ेगा। तो जो पवित्रता भगवान के नाम से कलयुग में आती है, वो आध्यात्मिक होती है, वो भौतिक नहीं। मान सम्मान या दंडधारी को देना चाहिए, इसके लिए यदि संन्यास ग्रहण करे तो वो सिद्धांत का भंग बनता। एक ही मात्र आदेश है, जारे दाख उतारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होना तारे ही देश। कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। हटो, निकलो। तो ये अन्यथा यदि कोई आध्यात्मिक आदेश नहीं है और सिद्ध की उसको पूर्ति नहीं है तो कुछ नहीं करना, भजन करते रहो। इसलिए कहते हैं कि ओ वानप्रस्थ अवस्था यह काफी है, वानप्रस्थ अवस्था ही काफी हो जाएगा बेड़ा पार। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है क्या? कौन से बारे में? जीव तत्व सदाशिव। हाँ, सदाशिव हमेशा प्रयत्नशील है अध्यात्म में, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। जबकि विष्णु तत्व प्रयत्नशील नहीं है, वो स्वतः इनका बंधारण है अध्यात्म का। हम भी शिव जी के अनुगामी बनकर प्रयत्नशील ही तो रहेंगे, इसीलिए वो हमारे सरदार हैं। वैष्णवानाम यथासंभव, होते हुए भी विरक्ति सीखनी है तो शिव जी से सीखो, सब कुछ होते हुए। जीव तत्व में आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी प्रथम जीव कहलाते हैं। अब देखो ब्रह्मा जी कितने प्रयत्नशील हैं कि वो भगवान का आदेश का पालन करूं, स्वयं की इच्छा है कि मैं भी कुछ करूं, तब तो अपने आप नहीं कर पाए, लेकिन करने की इच्छा तो रही, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति उधार दे दो। तो ये उधारी ब्रह्मा जी के विरासत में ही तो हमें मिल रही है, तो उधारी चुकाओ। कब तक उधार जीवन जिएंगे? 84 लाख योनियां उधारी करके ही तो जिए हैं ना। तो यही जीवन में मौका मिलता है भगवान की ऐसी सेवा करो कि ये उधारी माफ भी कर देंगे, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन में ना समझ रहते क्या फायदा, सारा जीवन गंवा देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।